नमस्कार भारत, 5 नवंबर मंगलवार। मैं हूं कुलदीप मिश्र। 16 देशों के मुक्त व्यापार समझौते आरसीईपी में नहीं शामिल होगा भारत।
कम से कम एक बार ऐसा लगा कि हाँ, जनमत का सम्मान हुआ और कुल मिला के राष्ट्रीय हित में फैसला हुआ।
महाराष्ट्र में सरकार बनाने को लेकर दिल्ली तक मुलाकातें, पर गतिरोध कायम।
कई लोग बोल रहे हैं लेकिन भारतीय जनता पार्टी कोई टिप्पणी करने वाली नहीं है। नई सरकार की जल्द से जल्द आवश्यकता है।
और दिल्ली के आसमान से कब हटेगी धुएं की चादर?
अभी से हवा चलनी शुरू हो गई है तो सब्सिक्वेंट 48 आवर्स में जो हालात एकदम खराब बने हुए हैं, इसमें इम्प्रूवमेंट होगी, इसमें विजिबिलिटी में भी इम्प्रूवमेंट होगी।
अखबारों की समीक्षा भी होगी, खेल की खबरें भी सुनवाएंगे, लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार, गुरप्रीत सैनी से। भारत ने आरसीईपी मुक्त व्यापार समझौते का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया है। भारत के विदेश मंत्रालय के मुताबिक राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया है। तेलंगाना में सोमवार को एक महिला तहसीलदार को उनके ही कार्यालय में दिन दहाड़े कथित रूप से एक व्यक्ति ने जिंदा जला दिया। 30 साल की विजया रेड्डी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उन्हें बचाने की कोशिश में कार्यालय के 2 अन्य कर्मचारी झुलस गए। राजस्व विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि हमलावर भी जल गया है। अधिकारी ने बताया कि शुरुआती जानकारी के मुताबिक उसका कोई भूमि विवाद था। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ महाभियोग की जाँच के सिलसिले में यूक्रेन के लिए अमरीका की पूर्व राजदूत मरी अवानविच का भी बयान लिया गया है। उनके इस बयान को अब लिखित रूप में प्रकाशित किया गया है, जिसमें उन्होंने बताया कि अपनी नौकरी को बचाने के लिए उन्हें राष्ट्रपति की तारीफ में ट्वीट करने के लिए कहा गया था। संसद में बंद कमरे में हुई सुनवाई में मरी अवानविच ने कहा कि उन्हें उस वक्त खतरा महसूस हुआ जब राष्ट्रपति ट्रंप ने यूक्रेन के नए राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की से फोन पर बातचीत में कहा था कि वो उपद्रवी हैं। इस पर महाभियोग जाँच में डेमोक्रेटिक पार्टी के प्रमुख एडम शिफ ने कहा,
Ambassador Yovanovitch had a well-earned reputation as a fighter of corruption.
राजदूत अवानविच भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ती रही हैं और वह यूक्रेन के साथ मिलकर भ्रष्टाचार से लड़ रही थी, और ये साफ है कि मरी अवानविच को पद से हटाने के लिए पूरी कोशिश की जा रही थी। ये थे एडम शिफ के शब्द, आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। चिली की राजधानी सेंटियागो में हजारों लोगों ने सरकार विरोधी प्रदर्शन किए। वहां आज इन प्रदर्शनों का 3रा हफ्ता शुरू हो गया है। भीड़ को तितर बितर करने के लिए सुरक्षा बलों ने पानी की बौछारें और आंसू गैस का इस्तेमाल किया। ट्रंप प्रशासन ने संयुक्त राष्ट्र को औपचारिक रूप से सूचित किया कि वो पेरिस जलवायु समझौते से बाहर हो रहा है। इसके साथ ही उसके पेरिस समझौते से अलग होने की 1 साल की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। इराक में फिर से शुरू हुए सरकार विरोधी प्रदर्शनों में एक दिन बाद राजधानी बगदाद में इंटरनेट बंद कर दिया गया है। चश्मदीदों के मुताबिक कम से कम 5 इराकी नागरिकों की मौत हो गई, जिनमें से एक सुरक्षा बल भी है। पत्थरबाजी कर रहे प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने गोलीबारी कर दी थी, जिसमें कई लोग घायल भी हुए हैं। एक प्रमुख मानवाधिकार समूह ने आरोप लगाया है कि सऊदी के क्राउन प्रिंस ने अपने आलोचकों के खिलाफ दमनकारी नीति अपनाई। अमरीका स्थित ह्यूमन राइट वॉच ने कहा कि मोहम्मद बिन सलमान ने 2017 में पद संभालने के बाद प्रमुख मौलवियों, शिक्षाविद और महिला अधिकार कार्यकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाइयां शुरू कर दी थीं, और ये गिरफ्तारियां और उत्पीड़न अब भी जारी है। समूह के मुताबिक हिरासत में लिए गए लोगों को बिजली के झटके और चाबुक के जरिए टॉर्चर किया जा रहा है। डच सरकार ने पहली बार माना है कि उसके लड़ाकू विमान ने 4 साल पहले उत्तरी इराक में हवाई हमला किया था, जिसमें आम नागरिकों समेत 70 लोगों की मौत हो गई थी। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि हमले के निशाने पर इस्लामिक स्टेट की एक बम फैक्ट्री थी। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने हांगकांग की नेता कैरी लाम से कहा है कि हिंसा को खत्म करना और कानून व्यवस्था बनाए रखना सबसे पहली प्राथमिकता है। हांगकांग में कई महीनों से सरकार विरोधी प्रदर्शन हो रहे हैं। शंघाई में हुई मुलाकात के दौरान शी जिनपिंग ने कहा कि उन्हें हांगकांग की नेता पर पूरा भरोसा है। अफ्रीकी देश गिनी से मिली खबरों के मुताबिक राष्ट्रपति अल्फा कोंडे के खिलाफ हुए प्रदर्शनों में पुलिस हिंसा को लेकर प्रदर्शन कर रहे लोगों ने सुरक्षा बलों ने गोलीबारी कर दी। बीबीसी समाचार।
ये बीबीसी हिंदी सेवा है, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम नमस्कार भारत। रेडियो के साथ साथ bbchindi.com और मोबाइल एप्लीकेशन पर भी लाइव। मेरा नाम है कुलदीप मिश्र। भारत सरकार ने RCEP यानी रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप में शामिल न होने का फैसला किया है। केंद्र सरकार का कहना है कि RCEP में शामिल होने को लेकर उसकी कुछ मुद्दों पर चिंताएं थीं, जिसके कारण देश हित में ये कदम उठाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे अपनी आत्मा की आवाज़ पर लिया गया फैसला कहा है, जबकि कांग्रेस इसे अपनी जीत के तौर पर पेश कर रही है। RCEP पर भारत के कदम पर क्या हैं प्रतिक्रियाएं और क्या कहते हैं आर्थिक विशेषज्ञ, बीबीसी संवाददाता आदर्श राठौर की रिपोर्ट।
सोमवार को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैंकॉक में RCEP सम्मेलन में हिस्सा लिया तो सबकी निगाहें इस बात पर टिकी थीं कि वो भारत को इस समझौते में शामिल करेंगे या नहीं। मगर RCEP सम्मेलन के बाद शाम को भारत के विदेश मंत्रालय की सचिव विजय ठाकुर सिंह ने बताया कि शर्तें अनुकूल न होने के कारण राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए भारत ने RCEP में शामिल न होने का फैसला किया है। उन्होंने सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से दिया गया बयान भी पढ़ा।
In his remarks on the subject, Prime Minister highlighted that he was guided by the impact.
इस विषय पर टिप्पणी करते हुए प्रधानमंत्री ने बताया कि भारतीयों और खासकर समाज के कमजोर वर्गों के लोगों और उनकी आजीविका पर होने वाले प्रभाव के बारे में सोचकर उन्होंने यह फैसला लिया है। उन्हें महात्मा गांधी की उस सलाह का ख्याल आया जिसमें उन्होंने कहा था कि सबसे कमजोर और सबसे गरीब शख्स का चेहरा याद करो और सोचो कि जो कदम तुम उठाने जा रहे हो उसका उन्हें कोई फायदा पहुंचेगा या नहीं। भारत RCEP की चर्चाओं में शामिल हुआ और अपने हितों को सामने रखते हुए मजबूती से मोल भाव किया। अभी के हालात में हमें लगता है कि समझौते में शामिल ना होना ही भारत के लिए सही फैसला है। हम इस क्षेत्र के साथ कारोबार, निवेश और लोगों के रिश्तों को प्रगाढ़ करना जारी रखेंगे।
RCEP एक ट्रेड अग्रीमेंट है जो इसके सदस्य देशों के लिए एक दूसरे के साथ व्यापार करना आसान बनाता है। इस समझौते के तहत सदस्य देशों को आयात निर्यात पर लगने वाला टैक्स या तो भरना ही नहीं पड़ता या फिर बहुत कम भरना पड़ता है। RCEP में 10 आसियान देशों के अलावा भारत, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के शामिल होने का प्रावधान था। अब भारत इससे दूर रहेगा। RCEP को लेकर भारत में लंबे समय से चिंताएं जताई जा रही थीं। किसान और व्यापारी संगठन इसका ये कहते हुए विरोध कर रहे थे कि अगर भारत इसमें शामिल हुआ तो पहले से परेशान किसान और छोटे व्यापारी तबाह हो जाएंगे। अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति से जुड़े स्वराज पार्टी के नेता योगेंद्र यादव ने RCEP से बाहर रहने के भारत के फैसले को अहम बताते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ने जनमत का सम्मान किया है।
इसके दीर्घकालिक परिणाम दूध के व्यापार के लिए, अलग अलग तरह के किसानों व्यापारियों के लिए इतने खतरनाक हो सकते थे, इसके बारे में तमाम तरह से सवाल उठाए जा रहे थे। सरकार इन सब सवालों के बावजूद आगे बढ़ी। ऐसा लग रहा था कि जाके साइन कर देंगे, लेकिन अंततः जनमत का सम्मान करते हुए प्रधानमंत्री ने फैसला किया कि नहीं, वो इसे नहीं करेंगे। कम से कम एक बार ऐसा लगा कि हाँ, जनमत का सम्मान हुआ और कुल मिला के राष्ट्रीय हित में फैसला हुआ।
RCEP को लेकर केंद्र सरकार के उच्च स्तरीय सलाहकार समूह ने अपनी राय देते हुए कहा था कि भारत को इसमें शामिल होना चाहिए। दूसरी तरफ भारत के उत्पादकों और किसानों की चिंता थी कि फ्री ट्रेड समझौतों को लेकर भारत का अनुभव पहले से ठीक नहीं रहा है। ऐसे में RCEP भारत की स्थिति को और खराब कर सकता है। क्रिसिल के अर्थशास्त्री सुनील सिन्हा ने BBC को बताया कि काफी दिनों से RCEP को लेकर चर्चा हो रही थी, मगर भारत ने ये देखकर इससे दूर रहने का फैसला किया है कि इससे फायदा कम नुकसान ज्यादा हो सकता है।
जो एग्रीमेंट्स होते हैं उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है वो ये है कि किसी भी देश के लिए इस किस्म के कोऑपरेशन में क्या है। तो जहां तक RCEP का सवाल है, ये नेगोशिएशन काफी दिन से चल रही थी, पर जो हमारे देश के अंदर बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स हैं या ट्रेड से जुड़े हुए लोग हैं, उनकी तरफ से ये लगातार डिमांड हो रही थी कि जो ये RCEP की बात देश कर रहा है ये देश के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अंततः भारत के जो नेगोशिएटर्स हैं उन्हें ऐसा लगा कि शायद जितना टेक अवे हमारे लिए है उससे ज्यादा गिव अवे है।
आर्थिक पहलू से अलग इस मामले में अब राजनीति भी शुरू हो गई है। भारतीय जनता पार्टी जहां इसे प्रधानमंत्री का दूरदर्शिता भरा फैसला बता रही है, वहीं कांग्रेस इसे अपनी जीत के तौर पर प्रचारित कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने आरसीईपी में शामिल न होने को सरकार का बड़ा कदम बताते हुए प्रधानमंत्री को इस बात की बधाई दी है कि वो पहले की कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकारों की तरह वैश्विक दबाव के आगे नहीं झुके। मगर पहले से ही आरसीईपी में शामिल होने का विरोध कर रही कांग्रेस के प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट करके कहा है कि ये राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए लड़ने वालों की जीत है। उन्होंने भारत के आरसीईपी में शामिल ना होने के कदम के लिए कांग्रेस और राहुल गांधी के विरोध को श्रेय दिया है। आदर्श राठौर, बीबीसी दिल्ली।
उधर महाराष्ट्र में सरकार बनाने को लेकर भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के बीच गतिरोध बना हुआ है। शिवसेना का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी को आधे कार्यकाल के लिए शिवसेना को मुख्यमंत्री पद देना ही होगा, जबकि बीजेपी का कहना है कि ऐसा कोई समझौता नहीं हुआ था। ऐसे में अब कभी शिवसेना के एनसीपी और कांग्रेस के साथ आने के कयास लगाए जा रहे हैं, तो कभी राष्ट्रपति शासन की चर्चा भी होने लगी है। मगर इस बीच महाराष्ट्र में चल रही राजनीतिक हलचल कल दिल्ली शिफ्ट हो गई, जहाँ भाजपा विधायक दल के नेता देवेंद्र फडणवीस ने दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष और गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात की, जबकि एनसीपी प्रमुख शरद पवार कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मिलने पहुंचे। पहले सुनिए अमित शाह से मुलाकात के बाद देवेंद्र फडणवीस ने क्या कहा।
सत्ता के समीकरण में कौन क्या कह रहा है इस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। कई लोग बोल रहे हैं लेकिन भारतीय जनता पार्टी कोई टिप्पणी करने वाली नहीं है। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि महाराष्ट्र को नई सरकार की जल्द से जल्द आवश्यकता है और जल्द से जल्द नई सरकार बनेगी, हम पूरी तरीके से आश्वस्त हैं।
क्या निकला इन मुलाकातों से, ये जानने के लिए आदर्श राठौर ने बात की बीबीसी मराठी सेवा के संवाददाता मयूरेश कोंडूर से।
जी, ऐसा तो सबकी उम्मीद थी कि कल जो दिल्ली में बैठक हुई दोनों गुटों में, यानी सत्ताधारी पक्ष जो है बीजेपी उनका भी और अपोजिशन यानी कांग्रेस और एनसीपी की भी बैठक हुई, लेकिन इसमें कोई भी डेडलॉक का जो हल है वो अब तक तो नजर नहीं आ रहा है और परिस्थिति वैसे की वैसे बनी हुई है। बीजेपी अगर बात करें तो देवेंद्र फडणवीस 24 तारीख को जब पूरे चुनाव के निकाल आए, रुझान आए, उसके बाद पहली बार दिल्ली गए थे। अमित शाह भी इस बीच में महाराष्ट्र में नहीं आए थे, उनसे उन्होंने बात की, कहते हुए ये कहा देवेंद्र फडणवीस ने कि महाराष्ट्र में जो बारिश हुई है और उसकी वजह से फसल का जो नुकसान हुआ है उसके लिए मैं मिला, लेकिन पूरी तरह रीजन राजनीतिक थे। बाद में चीफ मिनिस्टर ने सिर्फ ये कहा, बयान देते हुए सिर्फ दो सेंटेंस कही, उन्होंने ये कहा कि जरूर महाराष्ट्र में सरकार बनने जा रही है और मैं जिस तरह की शिवसेना से उनके ऊपर टिप्पणियां हो रही है, शिवसेना जिस तरह टीका कर रही है बीजेपी पर और अपनी मांगों पर अड़ी हुई है, इसके ऊपर मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा, बीजेपी से इसके ऊपर कोई बयान नहीं आएगा, हम सब जो है वो हल निकालेंगे, कैसे ये उन्हें नहीं बताया। उसके बाद हालांकि बीजेपी के सूत्रों से ये पता चलता रहा कि बीजेपी अब भी इसी पे अड़ी हुई है कि उन्होंने शिवसेना को किसी भी तरह का प्रॉमिस नहीं किया था कि 2.5 साल के लिए उन्हें वो चीफ मिनिस्टरशिप दे दे। हालांकि देवेंद्र फडणवीस ने बाद में शाम में कल शाम नितिन गडकरी से भी बात की, नितिन गडकरी का भूमिका अब अहम बन गई है क्योंकि वो भी महाराष्ट्र के एक बड़े नेता हैं। मैं अगर दूसरी तरफ की बात करूं, कल दिल्ली में शरद पवार वो भी पहली बार इस चुनाव के बाद गए और ये अटकलें बहुत लगाई जा रही है कि शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी ये इकट्ठा आ सकते हैं और बीजेपी सत्ता से बाहर जा सकती है। तो उन्होंने कल शाम सोनिया गांधी से बात की, करीब आधे घंटे उनकी बात हुई। बाद में जब उन्होंने पत्रकारों से बात की तो शरद पवार ने सिर्फ इतना कहा कि हमने सिर्फ कांग्रेस एनसीपी के बारे में बात की, हमने किस तरह का परफॉर्म किया है। जब उनसे पूछा है कि शिवसेना के बारे में क्या आप सरकार बनाना चाह रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि शिवसेना की तरफ से मेरे पास किसी भी तरह का प्रस्ताव नहीं आया है, फिलहाल हम अपोजिशन में हैं, लेकिन वो ये कहने से नहीं चूके कि कुछ भी हो सकता है।
दूसरी तरफ मयूरेश, महाराष्ट्र में भी संजय राउत और रामदास कदम जो है वो राजभवन जाके राज्यपाल से मिले।
जी जी, उन्होंने भी जब ये दिल्ली में सब हो रहा था तब शिवसेना यहाँ पे अपने मुद्दे पर अड़ी हुई थी और आज फिर से संजय राउत जो बार बार हर रोज वही बात कर रहे हैं, शिवसेना की तरफ से उद्धव ठाकरे कुछ भी नहीं कह रहे हैं, उन्होंने ये कहा कि उनकी मांग अगली है कि बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है तो उन्होंने जाके सरकार स्थापन करने का दावा पेश करना चाहिए। शाम में उन्होंने रामदास कदम जो शिवसेना के एक नेता है मंत्री भी रह चुके हैं पिछली सरकार में, उनको उन्होंने साथ में जाके राज्यपाल से बात की। हालांकि उन्होंने ये कहा कि राज्यपाल अब इस सिचुएशन में खुद अपने कदम उठा ले, ऐसा हमने उन्होंने कहा था, और कुछ किताबें उन्हें देनी थी इसलिए उनको किताबें देने के लिए गए थे। लेकिन कल जब हमने संजय राउत से बात की थी तब उन्होंने हमसे बीबीसी से यही कहा था कि उनका ये चैलेंज है बीजेपी को कि वो राज्यपाल के पास जाके सरकार बनाने का दावा पेश करे। हालांकि शिवसेना अभी भी अपने रुख पर कायम है।
जानकारी दे रहे थे बीबीसी संवाददाता मयूरेश कोड़नूर। अब बात दिल्ली के प्रदूषण की। कल भारत के सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में हवा के खराब स्तर को लेकर सख्त होते हुए राजनेताओं को हिदायत दी कि जहरीले स्मॉग के लिए एक दूसरे को दोष देना बंद करें। कोर्ट ने यह भी पूछा कि किसान अब भी पराली क्यों जला रहे हैं जिससे प्रदूषण में बढ़ोतरी होती है। दिल्ली में हवा के खराब स्तर के लिए आसपास के इलाकों में जलाई जा रही धान की पराली को जिम्मेदार बताया जा रहा है। बीबीसी संवाददाता अरविंद छावड़ा ने बात की चंडीगढ़ में मौसम विभाग के निदेशक सुरेंद्र पॉल से और जानना चाहा कि पंजाब हरियाणा में किसानों के पराली जलाने से दिल्ली की फिजा क्यों प्रभावित होती है।
देखिए, किसानों को पराली जलाना तो एक कंट्रीब्यूट करता है पोल्यूशन में, उसका कोई डाउट नहीं है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ पराली जलाना एक पूरा कारण नहीं है इसका, क्योंकि इसका और भी वजह है जो कि सारा साल हम पोल्यूट करते हैं एटमॉस्फेयर को। उसमें गाड़ियों का पोल्यूशन है, उसमें जैसे आपका उसके बाद आपका जो है कंस्ट्रक्शन का पोल्यूशन है, उसके बाद दूसरे इंडस्ट्रीज का पोल्यूशन है, तो कई तरह की और पोल्यूशन भी हैं जो सारा साल हम प्लास्टिक पोल्यूशन है जिसको हम एटमॉस्फेयर को हम खराब करते हैं सारा साल। इस समय पे क्योंकि पराली जलाने का हार्वेस्टिंग का टाइम होता है तो पराली भी जलता है, तो एक तरह से ये जुड़ जाता है उसके साथ।
पर ऐसा वाकई में हो रहा है कि जो पराली जलाई जाती है पंजाब में, हरियाणा में, और यहाँ का जो धुआं है वो दिल्ली में जाकर हवा को खराब कर रहा है, क्या ऐसा वाकई हो रहा है?
देखिए, हवा तो जाती है उस तरफ, क्योंकि हवा ही जो है पोल्यूशन एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाती है, लेकिन सिर्फ जो है पंजाब और हरियाणा का जो धुआं है और यहाँ का जो ये जो पराली है सिर्फ यही जवाबदार नहीं है, वहाँ का लोकल भी पोल्यूशन है दिल्ली उस एरिया का, तो वो भी जवाबदार है। लेकिन कुछ हद तक जैसे मेट्रोलॉजिकल कंडीशंस होती है, हवा है पंजाब हरियाणा में पराली जलाई जाती है, कुछ हद तक ये भी उसको पोल्यूशन लेवल को बढ़ाने में मदद करता है।
कितना परसेंट आप मानते हैं कि अगर पराली की बात करें कितना परसेंट धुआं पंजाब हरियाणा से कंट्रीब्यूट किया जा रहा है दिल्ली की तरफ?
देखिए, अभी जैसे सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने कुछ क्वांटिफाई किया था, 40% के आसपास जो है स्टबल बर्निंग का जो है असर है देखा जाता है दिल्ली के आसपास या बाकी इलाकों में।
40% तो बहुत ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन हो गया। तो ये बताया सर, एक साधारण लैंग्वेज में, साधारण भाषा में, कि ऐसा क्यों है कि जो सारे का सारा धुआं है वो हवा दिल्ली की तरफ लेके जा रही है, ऐसी क्या वजह है, या हमेशा ऐसी होता है?
नहीं, देखिए क्या है कि अभी जो दिल्ली और इसके आसपास के इलाकों में एक ऐसा हवा का हाई, जिसको बोलते हैं हम, हाई प्रेशर एरिया बना हुआ है, जो कि हवा वहाँ पे एक तरह से रुकी, यहाँ से हवा जा रही है और दिल्ली में रुक जाती है जाके, तो जो भी पोल्यूशन यहाँ से जा रहा है वहाँ ट्रैप हो रहा है और वहाँ का लोकल पोल्यूशन भी है। उसके बाद कुछ जो अभी आप देख रहे हैं कि अरेबियन सी में कुछ एक्टिविटी है, वहाँ पे कुछ साइक्लोन एक्टिविटी भी चल रही है, वहाँ से मॉइस्चर आ रहा है, बे ऑफ बंगाल से मॉइस्चर आ रहा है, तो एक तो मॉइस्चर की भी जो फेवरेबल कंडीशन है, मॉइस्चर भी वहाँ पे ऑलरेडी आ रहा है और हवा वहाँ पे रुकी हुई है जी। तो जब तक ये हवा ब्रेक नहीं होती है तब तक जो है बहुत ज़्यादा इसमें सुधार की गुंजाइश नहीं है, लेकिन ये ज़रूर है कि जैसे अभी से हवा चलनी शुरू हो गई है तो सब्सिक्वेंट 48 आवर्स में जो हालात एकदम खराब बने हुए हैं, दिल्ली में भी हवा चलने की शुरुआत हो जाएगा, तो अगले 6, 7 और 8 तारीख में ये जो एक तरह से जो बिल्कुल पूरा स्मोक बना हुआ है, स्मोकी पूरा चद्दर बची हुई है स्मोक की, इसमें इम्प्रूवमेंट होगी और इसमें विजिबिलिटी में भी इम्प्रूवमेंट होगी और ओवरऑल हालात जो है अगले 48 घंटे बाद जो है बिल्कुल ठीक हो जाएगी।
चंडीगढ़ में मौसम विभाग के निदेशक सुरेंद्र पॉल से बात कर रहे थे अरविंद छावड़ा।
नमस्कार भारत, शॉर्ट वेव 49, 41 और 25 मीटर बैंड यानी 6070, 7290 और 11995 किलोहर्ट्ज और मीडियम वेव 1413 किलोहर्ट्ज पर।
भारत और पाकिस्तान में चर्चित करतारपुर कॉरिडोर 9 नवंबर को खुलने वाला है। इसे लेकर दोनों देशों के बीच समझौता हो चुका है और कई सांसद, विधायक और मंत्री करतारपुर जाने वाले पहले जत्थे का हिस्सा बनने जा रहे हैं। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत की तरफ से और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान पाकिस्तान की तरफ से कॉरिडोर का उद्घाटन करेंगे। करतारपुर स्थित दरबार साहब वो जगह है जहां सिखों के पहले गुरु गुरु नानक देव के अंतिम दिन बीते थे। जैसे जैसे कॉरिडोर खुलने की तारीख नज़दीक आ रही है, लोग पंजाब के डेरा बाबा नानक में जुटने शुरू हो गए हैं। बहुत लोगों के मन में अब भी सवाल हैं कि करतारपुर जाने की प्रक्रिया क्या है। ऐसे ही सवालों को लेकर बीबीसी संवाददाता आदर्श राठौर ने बात की हमारे सहयोगी सरबजीत धालीवाल से।
देखिए, जो करतारपुर कॉरिडोर है, जो डेरा बाबा नानक और पाकिस्तान का जो गांव है करतारपुर, उसको आपस में जोड़ेगा और ये 9 नवंबर को इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो प्रोग्राम उनकी तरफ से जारी किया गया उसके मुताबिक 11 बजे करेंगे। और उसी दौरान एक जत्था जो यहाँ से जाएगा, जिसमें पंजाब के मुख्यमंत्री भी हैं और उसके अलावा कुछ और जो राजनीतिक लोग हैं, और वो जत्था जाएगा करतारपुर साहिब और वहां पे वो गुरुद्वारा दरबार साहब के जो दर्शन है वो करेगा और शाम को वापस लौटेगा।
इसकी दोनों जगहों के बीच में दूरी कितनी है?
देखिए, जो भारत और पाकिस्तान का इंटरनेशनल बॉर्डर है, उसमें जो सबसे जो बॉर्डर के पास गांव है भारत की तरफ से, वो है डेरा बाबा नानक, और डेरा बाबा नानक से जो करतारपुर साहब की जो दूरी है वो करीब 4.5 किलोमीटर है, और यही जो कॉरिडोर है यही दो गांव को आपस में जोड़ेगा। इससे पहले भी जो लोग थे वो जाते थे करतारपुर साहब दर्शन करने के लिए, पर उनको बाघा बॉर्डर से बकायदा वीजा लेके जाना पड़ता था, पर ये कॉरिडोर जो बना है इस कॉरिडोर के लिए उन्हें वीजे की जरूरत नहीं है और वो अपना कोई भी पहचान पत्र दिखाकर वहां पर जो है दर्शन के लिए जा सकते हैं।
अगर कोई 9 नवंबर को जाना चाहता है तो उसके लिए क्या व्यवस्था है, रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, जो फीस है वो कितनी लगेगी?
देखिए, इसके लिए भारत सरकार ने जो है होम मिनिस्ट्री की तरफ से एक वेबसाइट लॉन्च की गई, जिसमें prakashpurb550.gov.mha, उस पे जाके आपको लॉगिन करना होगा। उस लॉगिन के जरिए आपको वहां पे अपना जो डेट्स दे रखी हैं वो डेट्स सेलेक्ट करनी होगी, और फिर जो है जो भी डेट होगी वो 10 दिन का प्रोसेस है। उस पे जाने से यात्रा से पहले 4 दिन पहले आपको जो है जानकारी दे दी जाएगी कि आप इतनी तारीख को जाओगे, और उसके बाद वो परमिट की कॉपी लेके आपको और पहचान पत्र लेके डेरा बाबा नानक जाना होगा। वहाँ पे जो टर्मिनल बनाया गया है तो पैसेंजर टर्मिनल, वहाँ पे आपकी कागजी कार्रवाई पूरी होने के बाद आप वहाँ जाओगे और शाम को फिर वापस आना होगा भारत की तरफ से। यानी कि रात रहने की व्यवस्था जो है वहाँ पे करतारपुर साहब में नहीं की गई, और इसमें कोई भी भारतीय नागरिक जा सकता है, और इसकी जो फीस रखी गई है वो फीस जो है 20 अमेरिकन डॉलर जो प्रति यात्री है, यानी कि करीब 1400 के आसपास भारतीय करेंसी के मुताबिक वो फीस पाकिस्तान वसूल करेगा।
आपकी जो लोगों से बात है हुई होगी, जो लोग हैं उनमें कितना उत्साह देखने को मिल रहा है इस बात को लेकर?
काफी लोगों में उत्साह है, श्रद्धा है, तो दूर दूर से लोग वहां पे आ रहे हैं, और कुछ लोग क्योंकि 12 नवंबर को 550वां गुरुपूर्व है तो विदेशों से भी लोग आ रहे हैं, तो एक तरह से कह सकते हैं कि सबकी निगाहें अब 9 नवंबर की तरफ लगी हुई हैं, जिस दिन ये कॉरिडोर भारत और पाकिस्तान को आपस में जोड़ेगा।
जानकारी दे रहे थे सरबजीत धालीवाल। और अब वक्त है दिल्ली से छपने वाले अखबारों की समीक्षा का, और गुरप्रीत सैनी तमाम अखबारों के साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। बताइए गुरप्रीत, अखबार क्या कह रहे हैं आज?
जी, इंडियन एक्सप्रेस में सबसे ऊपर है, भारत ने क्षेत्रीय व्यापार समझौते में हिस्सा ना लेने का फैसला किया, RCEP 2020 में साइन किया जाएगा। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के लिए दरवाजे खुले हैं। वहीं उन्हीं का कार्टून का मैं जिक्र करना चाहूंगी जिसमें लिखा है कि 50-50 ट्राई करिए, बीजेपी मुख्यमंत्री ऑड तारीखों पर और शिवसेना का मुख्यमंत्री इवन तारीखों पर।
महाराष्ट्र में भी ऑड इवन फॉर्मूला है।
जी, इस बीच सोनिया गांधी से मुलाकात के बाद शरद पवार ने कहा है कि जनादेश विपक्ष में बैठने का आगे क्या होगा पता नहीं, ये जनसत्ता अखबार में है। लेकिन टाइम्स ऑफ इंडिया में पवार की पार्टी के एक नेता ने नाम ना बताने की शर्त पर कहा है कि शिवसेना के नेतृत्व वाली सरकार में शामिल होना चाह रहा है NCP, जिसे कांग्रेस बाहर से समर्थन देगी, उसके मनोनीत व्यक्ति को स्पीकर का पद मिल रहा है। नेता ने यह भी कहा कि सब कुछ इस पर निर्भर करेगा कि सेना बीजेपी के साथ गठबंधन तोड़ दे। इसके अलावा श्रीनगर में ग्रेनेड हमले में एक की मौत, कई घायल, ये खबर भी कई अखबारों में दिख रही है। और ये खबर भी है कि कश्मीर घाटी से पश्चिम बंगाल लौटे 138 मजदूर, रोजगार पर हावी चरमपंथ, सेब कारोबार को झटका।
हाँ, बीते दिनों वहाँ बाहरी कामगारों पर काफ़ी हमले की घटनाएं हुई हैं। एक खबर का जिक्र मैं दैनिक जागरण से करना चाहता हूँ गुरप्रीत। तो सबसे नीचे पहले पन्ने पर एक खबर है कि पावर प्लेयर से बदल सकती है आईपीएल की एक सूरत। तो आईपीएल में एक नया नियम लाने का प्रस्ताव है, सौरव गांगुली की तस्वीर इसमें, बीसीसीआई अध्यक्ष नए बने उनकी तस्वीर इस खबर के साथ है। वो प्रस्ताव ये है कि बीसीसीआई के एक अधिकारी के हवाले से ये दैनिक जागरण ने खबर छापी है। प्रस्ताव ये है कि एक ऐसी स्थिति पर विचार किया जा रहा है जहां टीमें अंतिम 11 की बजाय 15 खिलाड़ियों को डगआउट में बैठाएंगी और अगर ज़रूरत हुई तो विकेट गिरने के बाद या ओवर खत्म होने के बाद उन अतिरिक्त खिलाड़ियों में से किसी एक को अचानक 11 खिलाड़ियों में शामिल कर लिया जाएगा। तो इन्होंने मिसाल भी दी है कि मान लीजिए किसी टीम को 6 गेंदों पर 20 रन चाहिए, आंद्रे रसिल चोटिल हैं लेकिन अंतिम 11 में नहीं है वो, लेकिन अगर 6 गेंदों में 20 रन चाहिए तो आंद्रे रसिल को टीम में ले लिया गया, तो वो एक नया किस्म का रोमांच आईपीएल में आ सकता है। अभी इस पर विचार हो रहा है, अभी ये तय नहीं हुआ है।
द हिंदू अखबार में खबर दिख रही है कि जासूसी मामले में राष्ट्रपति से मिलेगा विपक्ष। व्हाट्सएप की ओर से बताए जाने के बाद जासूसी के आरोपों पर चिंता जताते हुए कांग्रेस समेत 13 विपक्षी पार्टियों के नेताओं ने सोमवार को ज्ञापन पत्र पर हस्ताक्षर किए और राष्ट्रपति को सौंपने के लिए समय की मांग की है। वहीं पुलिस और वकीलों के बीच फिर मारपीट, ये खबर है हिंदुस्तान टाइम्स में। 30,000 अदालत परिसर में पुलिस और वकीलों की झड़प के विरोध में सोमवार को दिल्ली उच्च न्यायालय और 7 जिला अदालत में वकीलों ने काम ठप रखा। इस दौरान कुछ जिला अदालतों में मारपीट की घटनाएं भी हुई। हिंदुस्तान टाइम्स अखबार के मुताबिक दिल्ली की जिला अदालतों के अंदर और बाहर सोमवार को वकीलों ने कथित रूप से पुलिस वालों, पत्रकारों और आम नागरिकों पर हमला किया, जिसमें एक ऑटो रिक्शा चालक का हाथ फ्रैक्चर हो गया।
खबर ज्यादातर अखबारों के पहले पन्ने पर है। बहुत शुक्रिया अखबारों की समीक्षा के लिए गुरप्रीत सैनी। और अब सुनते हैं खेल की दुनिया का हाल।
खेल समाचारों के साथ मैं सूर्यांशी पांडे। सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं क्रिकेट के मैदान पर, जहां पर इस बात की खबर तो पक्की है कि भारतीय टीम 22 नवंबर को अपना पहला डे नाइट टेस्ट मैच खेलेगी, लेकिन इसके क्या क्या नुकसान होंगे इस पर भी गौर करना जरूरी है। बांग्लादेश के खिलाफ 2 टेस्ट मैच की सीरीज का कोलकाता में होने वाला दूसरा टेस्ट डे नाइट होगा। भारत के लिए डे नाइट टेस्ट की चुनौतियां भी उतनी ही हैं जितना रोमांच। मैच की टाइमिंग, टिकट का दाम, गुलाबी बॉल से लेकर ओस तक डे नाइट टेस्ट का उद्देश्य पूरा करने में अहम भूमिका निभाएंगे। अब तक 11 डे नाइट टेस्ट हुए हैं, पर कोलकाता टेस्ट पहला मौका होगा जब डे नाइट टेस्ट ठंड के मौसम में खेला जाएगा, यानी ओस पड़ना तय है। ड्यू फैक्टर कितना बड़ा होता है ये लिमिटेड ओवर मैचों में देखा जा चुका है, तो ऐसे में ये एक समस्या डे नाइट मैच में हो सकती है। तो वहीं स्पिनर्स को मिलने वाली मदद कम हो जाएगी। ओस से तेज गेंदबाजों की तुलना में स्पिनर्स को ज्यादा नुकसान होता है, उनकी गेंद पर ग्रिप नहीं बनती है। पिछले साल जब भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर गई थी तो वहां एक डे नाइट टेस्ट भी प्रस्तावित था। भारतीय टीम ने यह कहकर साफ मना कर दिया था कि अभी खिलाड़ी डे नाइट टेस्ट के लिए तैयार नहीं हैं। अब जब टीम इंडिया अपने घर में डे नाइट टेस्ट खेल रही है तो वह विदेशी दौरे पर भी इसे मना नहीं कर सकेगी। और बांग्लादेश के क्रिकेटर शाकिब अल हसन पर प्रतिबंध लगने के बाद उनकी टीम के 2 खिलाड़ियों मुशफिकुर रहीम और मशरफ मुर्तजा ने उन्हें लेकर एक भावुक पोस्ट लिखा है, जिसमें दोनों ने जल्द ही मैदान पर शकीब की वापसी की उम्मीद जताई। मुशफिकुर ने उनका एक फोटो शेयर करते हुए लिखा कि आपके बिना मैदान पर उतरना बेहद दुखद होगा। वहीं मुर्तजा ने उनका हौसला बढ़ाते हुए लिखा कि हम 2023 का विश्व कप आपकी कप्तानी में ही खेलेंगे। दरअसल भ्रष्ट आचरण को छुपाने के मामले में ICC ने बांग्लादेश की टेस्ट और T20 टीम के कप्तान शाकिब अल हसन पर 2 साल का प्रतिबंध लगा दिया। शकीब पर आरोप था कि 2018 में 3 बार सट्टेबाजों ने उनसे संपर्क किया था, लेकिन उन्होंने ना तो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड और ना ही ICC को इसकी जानकारी दी। जांच के दौरान एंटी करप्शन यूनिट के सामने उन्होंने अपने ऊपर लगे आरोपों को स्वीकार कर लिया। अब अगले 1 साल तक शकीब का आचरण ठीक रहता है तो उन पर लगा दूसरे साल का बैन हट जाएगा। इस सूरत में वो 29 अक्टूबर 2020 से इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी कर सकते हैं।
चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर सुनिए गुरप्रीत सैनी से।
BBC समाचार। भारत ने RCEP मुक्त व्यापार समझौते का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया है। भारत के विदेश मंत्रालय के मुताबिक राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया है। तेलंगाना में सोमवार को एक महिला तहसीलदार को उनके ही कार्यालय में दिन दहाड़े कथित रूप से एक व्यक्ति ने जिंदा जला दिया। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ महाभियोग की जाँच के सिलसिले में यूक्रेन के लिए अमरीका की पूर्व राजदूत मरिया वानविच का भी बयान लिया गया, उनके बयान को प्रकाशित किया गया है। चिली की राजधानी सेंटियागो में हजारों लोगों ने सरकार विरोधी प्रदर्शन किए, वहां आज इन प्रदर्शनों का 3रा हफ्ता शुरू हो गया है। ट्रंप प्रशासन ने संयुक्त राष्ट्र को औपचारिक रूप से सूचित किया है कि वो पेरिस जलवायु समझौते से बाहर हो रहा है। बीबीसी समाचार।
नमस्कार, भारत में आज इतना ही। आपसे हमारी अगली मुलाकात शाम 7:30 बजे दिन भर में होगी। इस कार्यक्रम का तकनीकी पक्ष संभाल रहे थे देवाशीष कुमार। तो अब कुलदीप मिश्र को समस्त साथियों के साथ दीजिए अनुमति और देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए bbchindi.com के साथ। नमस्कार।